ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शब्दार्थ तत् यह सीता माता का पृथ्वी में समाने का संदेश श्रुत्वा सुनकर भगवान राम भगवान रामचंद्र रुंधन त्यागने का प्रयत्न करते अपि यद्यपि धिया बुद्धि से सुचह शोक स्मरण स्मरण करते हुए तस्या गुणः उनके गुणों को तान तान विभिन्न परिस्थितियों में न अशक्नोत समर्थ नहीं थे रोदधूम रोकने के लिए ईश्वरः परम नियंता होकर भी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। श्री सीता देवी के पृथ्वी में प्रविष्ट होने का समाचार सुनकर भगवान निश्चित रूप से दुखी हुए। यद्यपि वे भगवान है किंतु सीता देवी के महान गुणों का स्मरण करके वे दिव्य प्रेम बस आपने शोक को रोकने में असमर्थ थे। तात्पर्य सीता देवी द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के समाचार से उत्पन्न भगवान राम के शोकों को भौतिक नहीं मानना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भी विरह भाव होते हैं किंतु ऐसे भावों को आध्यात्मिक आनंद माना जाता है। वियोग जनित शोक तो ब्रह्म में भी पाया जाता है किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसे वियोग भावों को आनंदमय माना जाता है। ऐसा भाव तस्य प्रेम वश्यत्व स्वभाव का लक्षण माना जाता है और यह लादिनी शक्ति के प्रभाव में रहता है तथा प्रेम द्वारा नियंत्रित होता है। भौतिक जगत में ऐसे वियोग भाव केवल विकृत प्रतिबिंब होते हैं। हरे कृष्ण। आज प्रातःकालीन भागवत सप्ताह में उपस्थित सभी महानुभव भक्तगण मातृगण को स्कंद पंजाबी वाक्य की तरफ से विशेष स्वागत है। हरे कृष्ण। स्वागत मैं नहीं करने वाला हूं लेकिन मैं आज आया हूं आपके सामने इसीलिए उनकी तरफ से होगा। तो ये प्रसंग जो आप कई दिनों से सुन रहे हैं अभी अभी भगवान राम के उत्सव भी गया और आप लोग का भी वही प्रसंग चल रहा है भागवत में। अब रामायण जाने के बाद तो रामायण का अंतिम उत्तरकांड के वर्णन इसमें आ रहा है। तो आज के ऐसे और भी अच्छे दिन है, संक्रांति है, मेष संक्रांति। इस मेष संक्रांति सूर्य कड़ा में जो वैशाख मास के शुरू हुआ चैत्र के बाद में, तो ये एक महीना तुलसी शाड़ग्राम के जलदान की शुरुआत आज से होगा। शायद अनाउंसमेंट किए होंगे आप लोग, है ना। हाँ, तुलसी शाड़ग्राम के ऊपर जलदान आज से लेकर के एक महीना तक वृष संक्रांति तक करना होता है। और हम जानते हैं इस कलयुग में भगवान की जो प्रकट रूप है ये तुलसी शाड़ग्राम गंगा भागवत और भक्त, यही माना गया, यही प्रामाणिक प्रतिनिधि है भगवान के। जिनको सेवा से, जिनकी सेवा से भक्ति होता है, भगवान की तृप्ति होता है, भगवान की प्रसन्नता होता है, ये शास्त्र में वर्णन किया गया है। जो इसमें से डबल आज अपॉर्चुनिटी है, दोनों के सेवा का सौभाग्य आज से प्राप्त होता है एक महीना के लिए। क्योंकि तुलसी हम जानते हैं डेली तो पूजा करते हैं सुबह शाम कृष्ण प्रेयसी करके, है ना। नहीं, तुलसी कृष्ण प्रेयसी ऐसे प्रेयसी है कि भगवान को कितने अच्छे चीज दे दो बिना तुलसी पत्ता के तो वो स्वीकार नहीं करे। कुछ भी दे दो केवल एक तुलसी के पत्ता के अभाव में स्वीकार नहीं करेंगे। और कुछ भी ना दो, कुछ भी ना दो केवल तुलसी के पत्ते पानी के साथ दो, सुख दो, कैसे भी दे दो, इसमें तृप्त भगवान तृप्त हो जाते, प्रसन्न हो जाते। इतने भगवान के साथ उनका संपर्क है, भगवान इतने उनको चाहते हैं, और इतने उच्च कोटि के तुलसी जी हैं, तुलसी महारानी भगवान की प्रसन्नता के मुख्य कारण है। तो और शालग्राम, शालग्राम तो साक्षात भगवान है ही है। बाकी जितने भगवान की विग्रह, चाहे धातु निर्मित हो, काष्ठ निर्मित हो, प्रस्तर निर्मित हो, मूर्तिका निर्मित हो, कैसे भी हो भाई, उनको बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा करो, जो कुछ करो, फिर जाकर पूजा होजा, नहीं तो दुकान में तो ऐसे ही ढेर लगे रहते हैं, कोई पूछते नहीं उनको विग्रह मूर्ति। लेकिन श्री शालग्राम कुछ नहीं जरूरत है, आज गंडुकी से उठाओ, आज ही पूजा करो, उनके लिए प्राण प्रतिष्ठा हो, तो साक्षात प्रतिष्ठित, नित्य प्रतिष्ठित उसी में है। कोई पूजा करे या ना करे, भगवान उसी में है, हमेशा रहते हैं। उनके लिए कोई आचार विचार प्राण प्रतिष्ठा आदि कोई आवश्यकता नहीं। शास्त्र कहता है वो साक्षात भगवान है, भगवान के रूप है शालग्राम शिला। तो ये साक्षात भगवान शालग्राम शिला के रूप में, और भगवान के नित्य प्रेयसी, और जिनके द्वारा भगवान स्वयं प्रसन्न, अति प्रसन्न होते हैं, इन दोनों की सेवा के सौभाग्य आज भक्तगण को प्राप्त होता है, आज से लेकर महीना तक। तो सब तुलसी जी की सेवा करना चाहिए। शालग्राम जिसका पास ना हो, नहीं हो, तुलसी जी तो है सभी के घर में, मंदिर में, इधर उधर हैं, तो उनको विशेष सम्मान। और अभी गर्मी शुरू हो गया, उनको जलदान करना, सुबह शाम उनको पोषण करना, ये सेवा करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे, अगर कई जगह में भक्ति है, तो अगर जानना चाहते हैं किसी प्रकार से, तो जाके देखो अगर तुलसी के पौधा किस प्रकार यहाँ होगा है, बहुत खिल करके, बहुत बढ़िया पुष्टित होकर के, पुष्ट होकर के तुलसी जी प्रसन्न है दिखाई पड़े, तो सुनना हाँ भक्ति है। क्योंकि भक्ति नहीं होने से तुलसी खिलेंगी नहीं, तुलसी की पुष्टता से भक्ति की पुष्टता माना जाता है, ऐसे कोई मंदिर में कहीं भी। तो इसीलिए अगर आपने भक्ति पुष्ट करें, तुलसी की पुष्ट करना पड़ेगा, सेवा करना, क्योंकि इसी में टीका हुआ है। भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते हैं, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तोषनी जानी, माधव को तुष्टि करने का कारण तुलसी है। अगर तुलसी देख लिया, मर मन प्रसन्न हो जाता है, हाँ हाँ, भगवान को प्रसन्न करने का माध्यम तो प्राप्त हो गया मुझे, मेरे नालायक से तो भगवान पटेंगे नहीं, लेकिन उन तुलसी के माध्यम से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मन प्रसन्न हो जाएंगे तुलसी, बाकी हमारा साहस होप है, और होपलेस होने का कहीं नहीं, तुलसी है। और तुलसी नहीं शालग्राम ही डबल होप है ना। नहीं तो अभी इस प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं, तत्सुत्वा भगवान रामो, कि भगवान राम सुने, क्या सुने, तत्सुत्वा कुछ सुने। तत् शब्द से ये कहते हैं कि पहले आप आलोचना कर चुके हैं क्या ना, भगवती सीता भूमि में समा गई, आपने मां की गोद में चली गई, वैदेही है ना, भूमि की पुत्री है ना सीता जी, तो हाँ, तो मां की गोद में चली गई। हम ऐसे वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं, ऐसे मानस में तो ये प्रक्षिप्त है, उसे वर्णन है ही नहीं, वो मानते नहीं। मानस के अनुयायी लोग, आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे, भारतवर्ष में तो बड़े प्रचलित हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवान राम से सीता जी की तो विरह हुआ ही नहीं, अलग हुआ ही नहीं, ये प्रसंग मानते ही नहीं। जो भी हो वो भी सत्य है, कल्पभेद हो सकता है, लेकिन भागवत में लिखा गया है, पद्म पुराण में लिखा गया है, वाल्मीकि में लिखा गया है, तो भी हो वो भी सत्य है, दोनों ही सत्य है। भगवान की लीला अनंत है, कभी वो सीता जी को विदा नहीं किया, उनके साथ में रखे, कभी विदा कर दिए होंगे, वो दोनों का ही लीला है, साथ में रहना ही लीला, अलग हो जाना भी लीला, वियोग और संयोग दोनों ही भगवत लीला है। तो इसी में इस वियोग का वर्णन हुआ है, जिसका हम वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में पढ़ते हैं, कि इसमें भी वर्णन आया है कि भगवान राम एक प्रकार छिप करके अपने राज्य से भ्रमण कर रहे थे। वाल्मीकि में लिखा गया कि किसी के दूत के माध्यम से सुने, जो भी हो घटना इस प्रकार है, भगवान को पता चला कि इस प्रकार उनके ऊपर में लोग इल्जाम लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं। एक धोबी, एक छोटी ग्रेड का लोग, वो बोलता है क्या उनके पत्नी को ओ कहीं जाकर किसके हर में रुक कर आ गई थी, हटो हटो मैं नहीं रखने वाला तुम, गेट आउट फ्रॉम हियर। क्यों क्या होगा? अरे मैं थोड़ी ये राम जैसा हूं ना क्या, राजा राम जैसा हा? अरे इतने 14 महीना उनका दूसरे घर में रहा, फिर उनको स्वीकार कर लिया, हमने रखा एक रात के लिए स्वीकार नहीं, नहीं। ये बात भगवान राम के कान में आ गई। उन्होंने प्रयास नहीं किए सत्यता जानने के लिए, प्रमाण करने के लिए क्या घटना की सत्य असत्य कुछ और कुछ नहीं, ये धर्म है, भगवान धर्मज्ञ हैं। बात सुन लिए, लोगों का मन में ही भावना है और उसको प्रमाणित करना प्रूव करना कोई आवश्यकता नहीं, वो धर्म जानते हैं। मेरे लिए धर्म ही है, मेरे लिए मर्यादा ही है कि मैं इतने करने पर भी लोगों का मन में शंका है, मेरे चरित्र में, मेरे पत्नी के चरित्र में बहुत हो गया। बस उन्होंने आ करके सीता जी को वन त्याग दी। बोले नहीं, अब यद्यपि वाल्मीकि में वर्णन आता है पहले कि सीता जी एक बार गर्भवती अवस्था में भगवान राम से पूछे अपने मन के बाप, मेरा मन कर रहा है कुछ दिन वन में जाकर रहने, क्योंकि अभी इतने साल वन में घूम कर आया ना, 14 साल घूम कर आया, अच्छा लगा और यहाँ जो राजभवन में देखे कि यहाँ तो घर में राजकुमार को शादी शुदा हुए तो घर में विदा कर दे जंगल में, ये मेरे लड़का पैदा होंगे पता नहीं क्या करेंगे, दिस प्लेस इज नॉट गुड। तो उनने उपवन में जाने के लिए इच्छा प्रकट की थी, भगवान ने भी ये सुयोग मिला तो लक्ष्मण के द्वारा जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम तक भेज दिए। और यद्यपि वाल्मीकि आश्रम नहीं गए थे तो वाल्मीकि जी बहन वो नहीं गए, उनको वाल्मीकि आश्रम में रहे, वहाँ पे उनके दो पुत्र लव और कुश हुए। तो भागवत कहता है कि सारे भाइयों का, चार भाइयों का सभी के दो दो पुत्र हुए, तो सभी के तो अपना घर में हुए, भगवान के पुत्र तो वाल्मीकि आश्रम में हुए। तो पुत्र को लालन पालन करके, बड़े करके, शिक्षित आदि करके, वाल्मीकि के सौंप करके माता जी ने, सीता माता ने भगवान विरह को और सहन नहीं कर पाई, और वाल्मीकि आश्रम में पुत्रों को सौंप करके उन्होंने वहीं भूमि में चली गई, भूमि में समा गई करके भागवत का ऐसे कहना है। लेकिन वाल्मीकि में आप सब जानते हैं जो वर्णन है कि उन्होंने तो लव कुश सब रामायण गान कर रहे थे, सुन करके लोग आए अयोध्या में, आया गान करने के लिए कुछ साल से, अयोध्या में जब गान करने लगे लोगों को भगवान राम सुने कि दो लड़के इतने सुंदर चरित्र गान कर रहे, तो उनको राज दरबार में बुलाए, बोले आओ यहाँ। और राज दरबार में विशेष करके ओ राम नहीं जानते कि उनके पुत्र करके, अरे सर्वज्ञ हैं तो जानते भी होंगे, जो भी हो बाकी किसी को पता नहीं था, अज्ञात में ओ दोनों बालक भगवान के पुत्र स्वयं लव कुश आए और आ करके उन्हीं के चरित्र गान करने लगे। उसी को सुन करके राम दरबार के सभी लोग, ऋषि महर्षि उनके भाई ब्रास परिवार सब सुने, और जो जो प्रकट लीला सत्य सत्य वाल्मीकि रामायण सब सुने, सुन करके अंततः जब पता लगाए कि पता लगा कि यही तो अश्व के घोड़ा जो रोके थे, जो जो कांड आप सुने होंगे, जो भी हुआ प्रमाणित हो गए थे, ये किससे कम नहीं है, राम के पुत्र राम से भी कम नहीं है, लक्ष्मण हनुमान तक भी घुटना टेक दिए उनके सामने, अरे उनको कैसे कम, वो तो महाबली थे इतने बालक अवस्था में भी, तो भगवान राम तक गए थे, वहां जाकर वाल्मीकि आकर रोक दी, बोले कैसे। तो जो भी हो, तो पहचानने के बाद अब वाल्मीकि में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान जो जान लिए यही मेरे पुत्र हैं, और वो सारे जो अयोध्यावासी अब बहुत पीड़ित थे, बहुत अपने आप को मानते थे दोषी कि बहुत हो गया, अब तो वापस ले आए, हम लोग का इस प्रकार आपके प्रति दोषारोपण करने के कारण आपने जो दंड दिए, अपने आपको सीता माता को भी दंड दिए, हम इसके लिए भागे, हमको अभी माफ कर दीजिए, अभी सीता माता को घर ले आए, सभी ने प्रार्थना किए, अयोध्यावासी सब, बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्राह्मण सब प्रार्थना किए। तो सीता माता को बुलाया गया राज दरबार में, अपने दोनों पुत्र थे सभी थे, वाल्मीकि स्वयं लेकर आए, तभी भी सबका सामने भगवान राम ने स्वीकार करने से पहले एक बार उनको और परीक्षा देने के लिए कहे। एक बार तो लंका में परीक्षा दिए थे, अग्नि प्रवेश करके अग्नि परीक्षा दी थी, अग्नि परीक्षा देने के बाद में भी, अग्नि परीक्षा में भी ऐसा है, यद्यपि सीता जी को उद्धार करने के लिए भगवान ने कितने बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए है ना, नहीं पूरे जंगल भ्रमण किए, कितने दुख किए, अरे बंदर भालुओं की करोड़ों संख्या में लेकर के और समुद्र को बांध डाले, समुद्र में बांध करके लंका गए, लंका में रावण जैसे त्रिलोक विजय वीर उनके सामने महायुद्ध हुआ, लंबा समय युद्ध होकर उनको पूरे नाश करके तहस नहस मार करके जब पूरा होगा विभीषण को राजा बनाए तो सीता जी के उद्धार के बाद आया, पूरे रावण मनुष्य नाश के बाद में सीता जी को लाया गया। सीता जी आई बड़े प्रेम से, आज उनके पति प्रभु श्री राम को दर्शन करके बड़े आकुल होकर के जब आती थी भगवान बड़े वितृष्ण भाव से देखे, जैसे कोई मतलब नहीं उन्हें, अरे ये क्या है सीता जी, क्या मुझे देखते भी नहीं। जब आकर के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़ के बोली, सभी लक्ष्मण आदि विभीषण तो क्या हो गया भगवान का, उन्हीं के लिए तो ये सारे कुछ किए, सारे प्रोजेक्ट उनके लिए किया, अब वो आई तो उनको देखना नहीं चाहते। भगवान बोले, देखो देवी, मैं एक राजा का कार्य किया, मैं राजा हूं और एक पति हूं, एक पति और राजा का जो धर्म होता है कार्य मन किया कि पति के पत्नी के अपहरण हो गया था, तो इसलिए उसका मैं बदला लिया, दुष्ट रावण को बद्ध के असमूल नाश किया और अभी तुम जा अच्छा तो उसे जा सकते, आपके तो हूं लेकिन मैं कैसे स्वीकार कर सकता, मेरी भी मर्यादा है, आप इतने दिन दूसरे के घर में रहा, मैं कैसे स्वीकार कर सकता। भगवान ने कह सकते सम अब तो ये कैसा है, तो ऐसा कहे तो प्रमाणित करना होगा, तू मेरे से इतने दिन अलग दूसरे घर में रहा, तो इस जब पूरे सभा नीरव हो गया, विभीषण सब रोने लगे क्या है, तो सीता देवी ने लक्ष्मण को लिया, लक्ष्मण अब लकड़ी लेकर के आओ, प्रभु के कहना ठीक है, मुझे रावण ने हरण करके लाया, इतने दिन में रावण के यहाँ रहा तो मुझे, वो भी एक आदर्श राजा है, उनके मर्यादा है, मुझे कैसे स्वीकार कर लेंगे, तो मुझे मेरे सत्यता सत्यता को प्रमाण करना होगा, तो मैं अग्नि परीक्षा करके प्रमाणित करूंगी। सब हाहाकार मच गया, लक्ष्मण भगवती सीता के आदेश से लकड़ी ला करके अग्नि संयोग हुआ, हुत हुत करके आग जल रहा था, भगवती सीता ने आग को परिक्रमा करके भगवान के श्री चरण को ध्यान करके प्रणाम करके बोलने लगी, बोले अगर मैं अब तक जन्म से लेकर अब तक विशेष करके जब रावण मुझे लेकर आया, जितने दिन मैंने अलग से रहा पति से अलग रहा, अगर एक क्षण भी सोना तो है ही नहीं, सोना नहीं तो सपना कैसे देखूंगी, वो तो है ही नहीं, दिन रात चौबीस घंटा रोती थी, बोले किसी भी समय में एक क्षण भी अगर कोई पर पुरुष के छाया के प्रति भी मेरा मन आकृष्ट होगा कि किसी को मैं देखा होगा तो अग्नि मुझे भस्मसात कर दे, ये अनाउंस करके भगवान के चरण प्रणाम करके अग्नि प्रवेश कर गए। सबके देखते थे कि प्रवेश की तो कुछ नहीं, ऐसे तो अग्निदेव के पास भगवान ने देकर गए थे, तो अग्निदेव ला करके स्वयं बोले नहीं ये असली है, बिल्कुल सती है, किसी प्रकार से उनके कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। तो फिर सभी के सामने इस पर निर्दोष प्रमाणित अग्नि परीक्षा देने के बाद में भगवान ने स्वीकार किए, नहीं तो स्वीकार नहीं कर रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वहां से स्वीकार करके लाए, सभी को मन कितने लगा, कितने कठोर है प्रभु, इतने करते जो भी वहां से करके लाए, यहाँ कोई एक फोर्थ ग्रेड के लोग के अपने घर में बातचीत को सुन करके कोई प्रमाण कोई प्रूफ ढूंढे बिना सीधा अपने ऊपर इल्जाम ले लिए, लेकर के भगवती सीता जैसे अपने पत्नी को गर्भवती अवस्था में अलग कर दिए, जंगल में भेज दिए। वो तो भगवती इच्छा से वाल्मीकि आश्रम में गई, आजकल कहीं होता तो आश्रम भाषण तो कोई होता ही नहीं, कौन रखेगा, तो जो भी वहां जाकर के, लेकिन फिर भी सीता देवी तो सीता देवी भगवान राम के वियोग भी सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन क्योंकि संतान थे दोनों दोनों तो उनके लालन पालन के तक अपेक्षा की, जब तक देखा कि पुत्र अभी समर्थ हो गए वाल्मीकि के शिक्षा दीक्षा से और मेरे सेवा से, वो बिल्कुल दोनों बेटे अभी पुष्ट है, जवान हो चुके हैं वाल्मीकि, तो उनको सौंप करके महर्षि वाल्मीकि को सीता जी ने बोले मेरे से वो सहन नहीं होगा पति विरह, तो भूमि में प्रवेश कर गई, ऐसे भागवत कहती है। लेकिन वाल्मीकि के तो तो राज दरबार के अंदर ही उन्होंने जब भगवान तभी बोले ठीक है अभी आइए सब कुछ हो गया, अयोध्यावासी माफ ही मांगते हैं, असर पश्चाताप कर रहे हैं, अब तो स्वीकार कर लीजिए। लेकिन भगवान राम तभी भी बोले ना, लोगों के मन में जो शंका आया है, मैं किसी का मुंह से तो हाथ नहीं दे सकता मुंह में, लेकिन लोगों के मन में तो कोई भी शंका हो तो बोलेंगे, लेकिन मेरा धर्म है, मेरा मर्यादा है, मैं फिर भी प्रमाणित करना चाहूंगा कि तू निर्दोष है। तो इसलिए सीता जी बोले एक तो अग्नि परीक्षा दी, दोबारा तुम घर के अंदर आके इसे जलाऊं सबके सामने, तो कोई बात नहीं, बहुत हो गया आपके साथ मिला था, अभी मेरे माँ के पुत्र। तो उन्होंने इस सीता जी कुछ करने से पहले वाल्मीकि स्वयं खड़े हो गए, उद्घोष करके बोलने लगे पूरे राज सभा में भगवान से, बोले हे प्रभु राम, कान खोल कर सुन लीजिए, दस दिग्पाल कान सुनकर सुन लीजिए, ऊपर से लेकर जितने रखे जखे से गंधर्व किन्नर देवता सभी सुन लीजिए, मैं वाल्मीकि महर्षि मैं घोषणा करता हूँ, मैं जितने मेरा तप बल है, आजन्म जितने मैंने त्याग तपस्या जो कुछ मैं त्याग किया हूँ सभी को मैंने जलांजलि देना चाहता हूँ, सबको दाव में रखता हूँ, रख करके मैं घोषणा करके कहता हूँ सीता जी के अंदर दोष तो हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, पूर्ण निर्मल है, निर्दोष है, अगर कोई है तो आकाश से देवता पुष्पवृष्टि करने लगे, आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगा, देवताओं ने नगाड़ा बजाने लगे कि इसे सत्य भाषण से, लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान बोले ना, आप कहते हैं आपके आश्रम में थे इसलिए आप बोलते हैं, लेकिन मेरे जानते हो लोग, मैं केवल एक पति नहीं हूँ, मैं एक राजा भी हूँ, राजा के कर्तव्य होता है लोगों के मन में जो शंका है उसको निवारण करे। तो सीता जी ने बोले ठीक है पति तो अपना मर्यादा में रहते, मैं भी अपना मर्यादा रखूँ, मेरी मर्यादा है, मैं माँ के गोद में जाता हूँ, बस हो गया वो। तो सभी के सामने वैदेही ने भूमिदेव को प्रार्थना की, बोले माँ अगर सचमुच में निर्दोष हूं तो तुम मुझे अभी अपने गोद में ले लो। तो उनके बात सुनकर के सबते देखते देखते भूमि फट गई और सीता जी भूमि के अंदर चली गई, हाहाकार मच गया। भगवान का तो वहीं इतने बड़े क्रोध हुआ वाल्मीकि के अनुसार, लेकिन भागवत में प्रमाण कोई कल्प में ऐसा भी लीला होगा, भागवत प्रमाण है था कि सीता देवी ने वाल्मीकि आश्रम में चली गई, वो आई नहीं राजदरबार, वाल्मीकि जो वहीं थे उनको अपने बेटे को सौंप करके वहीं चली गई और वो खबर आके पहुंचा वाल्मीकि जी, अगर बताए होंगे कि लोग को बताए होंगे भगवान सुने, सुन करके ये दुख हुए। तत्श्रुत्वा भगवान राम, राम तो राम नहीं तो भगवान साक्षात है, भगवान भी जब सीता जी के इस प्रकार क्रिया को सुने कि भूमि प्रवेश के लीला को सुने, सुन करके तत्श्रुत्वा भगवान राम इंधन अपी आप अपने शोक को परित्याग करने में असमर्थ हो गए, इतने दुखी हो गए, अपने दुख को दबाने पर भी दब नहीं सका, इतने दुखी हो गए। तो उन्होंने यही बात कहते हैं कि उनका याद करने लगे सीता देवी का गुण का, सीता जी के गुण की याद करते करते भगवान ने बहुत शोक किए, यद्यपि भगवान सर्वज्ञ हैं उनको क्या शोक करने का है, कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के बात सुनकर भगवान इतने दुखी हुए। तो प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि भगवान होते हुए भी, सर्वसमर्थ होते हुए भी इस प्रकार जो शोक प्रकट करने का, ये हम जो भौतिक संसार में भौतिक लोग अपना बुद्धि से जो सोचते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान संपूर्ण पूरा पूरा आध्यात्मिक है, चिदानंदमय है, चिन्मय है, उसमें कोई भौतिकता का लेस मात्र भी नहीं है। तो उनका दुख और सुख दोनों ही चिदानंद है, चिन्मय है, उसमें भौतिकता है नहीं, उनका दुख भी जैसा है सुख भी जैसा, दोनों ही एक ही प्रकार के है। लेकिन इस भौतिक संसार में, क्योंकि भौतिक संसार आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, उल्टा प्रतिबिंब है, वहां जो होगा जैसे हम है, हम अपने को आईना में देखेंगे, हमारा ये राइट साइड लेफ्ट साइड दिखेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड उल्टा दिखता ना, आप देखिए एक पेड़ पानी में उसका प्रतिशोभी देखेगा तो वो कैसे दिखेगा, जड़ ऊपर और ऊपर नीचे ऐसे दिखते ना उल्टा, तो उल्टा है। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत ये है, उसका प्रमाण ही भौतिक जगत, क्योंकि छाया को देखने से ये प्रमाणित है कि काया तो होगा भाई, काया के बिना छाया हो ही नहीं सकता, जो शैडो है तो मतलब तो है ना, नहीं काया तो है, तो भौतिक जगत है, यही प्रकट प्रमाण है कि आध्यात्मिक जगत है, नहीं तो छाया कैसे आ गया, ये छाया जगत है। जब छाया है तो काया अवश्य है, तो कैसे होगा, न जस्ट उल्टा होगा, छाया के उल्टा काया होगा ही, यही है विज्ञान। तो जैसे इस जगत में हम सबसे ज्यादा सुख आनंद जिसको मानते हैं, इस संग सुख को, काम को सबसे बड़ा तप मानते हैं ना, हर संसार काम मय इदं जगत मैथुनागार कहा गया शास्त्र में भौतिक संसार को। तो ये संसार के जो लक्षण है, सबसे सर्वोत्तम सुख जिनको मानते हैं काम को, ठीक आध्यात्मिक जगत में सबसे नीच सुख है, सबसे रिजेक्टेड माल है। वहां क्या सुख है, वहां प्रेम है, प्रेम का उल्टा है काम, काम का उल्टा है प्रेम, ये दोनों को समझना होगा। काम क्या है ना, मेरी प्रसन्नता, मैं खुश हो जाऊं, भले मियां बीवी हो, पति पत्नी हो, पत्नी चाहते मैं खुश हो जाऊं, पति चाहते मैं खुश हो जाऊं, दोनों दोनों का खुशी में है, कोई खुशी नहीं हो सकता, वो तुझे खुश नहीं, वो तुझे खुश नहीं कर सकता, तो इसलिए दुखी होता है परिणाम। ये संसार में अभी तक कोई हुआ ही नहीं, हो नहीं सकता। भगवान राम स्वयं आकर भी एक जगह पर, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान राम ये सिखाना चाहते हैं कि देखो मैं भी आया, फिर भी पत्नी के साथ फिर दुख तो है ही, दुख दिखाता, कभी भी गड़बड़ी, किडनैप भी हो सकता है, कभी हो सकता है संसार में, घर बाड़ी में पिताजी कुछ बोल दिए, भाई झगड़ा, ऐसा तो है ही है, संसारी मामला ऐसा है ही है। लेकिन भगवान के जो शोक, भगवान के साथ रहना, ये कोई साधारण भौतिक संसारिक शोक नहीं है। भगवान सीता जी के विरह में जो दुख कर रहे थे, वो जो वियोग था, वो लादिनी सती के प्रेम के प्रभाव था, भगवान की भक्त वश्यता था। अब राधा रानी कृष्ण के विरह में 100 साल ब्रज में गुजारी, लेकिन भगवान इस बात को जानते हैं, और गोपियां और राधा रानी भी जानते हैं, भल में बाहर से केवल रोते रहे सब कुछ, लेकिन रोने में जो आनंद है ना, वो मिलन में नहीं है, इसीलिए तो लंबा पीरियड इसमें रहे। नहीं तो भगवान के सर्वोत्कृष्ट भक्त, सबसे अपना भक्त तो गोपियां है ना, ब्रजवासी है ना, उनसे बढ़कर भगवान का अपना कौन हो सकता है, तो उनको 100 साल अलग क्यों रहे उनसे, क्योंकि इसमें जो आनंद उनको मिलता है ना, वो पास में रहने से आनंद नहीं मिलता। आप भौतिक जगत में भी इसको प्रमाण करके देख सकते हैं, भौतिक जगत में कोई किस प्रेमिक प्रेमिका हो, वो अगर वो कोई दूर है, दूर दूसरा देश में, दूसरा देश में केवल फोन में या मेल में बातचीत होता है, ऐसे कुछ होता है, इसमें से जितने प्रेम का गाढ़ता रहता है जैसे, वो अगर मिल गए ना, और ये 15 दिन महीने में फट जाए, हाँ, और फिर नहीं रहेगा ना, वो दूर से जितना गाढ़ समझते नहीं, तो यही है, क्योंकि ये काम में जगत है, इसमें प्रेम है ही नहीं। लेकिन ये जो वियोग है, दुख है, जो सुख है, ये सब चिन्मय जगत है, प्रेम जनित है, इसलिए भक्त वश्यता के कारण, भक्त के प्रेम से भगवान इतने वशीभूत हो चुके हैं कि उनके विरह उनको सुख देता है, और उस सुख में आनंद होते हैं, हाय हाय मेरे भक्त कितने, जो तान तान गुणान, जो सीता देवी के गुण है, सीता देवी तो प्रधान भक्ति की अधिकारिणी थी, तो उनके जो सेवा, उनके जो भक्ति, उसी को भगवान याद करते हैं, याद करके भी जो दुख प्राप्त करते हैं, ये केवल भक्ति के प्रभाव है, भगवान की बस कर लेती है भक्ति। सीता जी की जो सेवा, जो भक्ति थी, जिसके भगवान प्रसन्न हो गए थे, उसी को याद करके रोते हैं, नहीं तो नहीं, नहीं तो खुद ही आदेश दिए कि ले जाओ उनको, यहाँ छोड़ दो, लेकिन यहाँ शोक क्यों कर रहे हैं, कि नहीं वो तो चली गई, लेकिन वो जो भक्ति की थी भगवान उसको भूल नहीं सकते। तो हम लोग का अंदर तो शक्ति नहीं भक्ति करने का, ना कोई योग्यता है, लेकिन फिर भी हम भक्ति करने का इच्छा मात्र करें, इच्छा करें कि आज नहीं तो एक ना एक दिन तो भक्ति कर पाएंगे। भक्ति करने क्या हुआ आवश्यकता है, ना नाम जप करो, नियम पालन करो, ये तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ये जो काम आवश्यकता उसको करो, तो आगे चल करके कोई भक्ति करने के लिए तू लायक हो सकता है। तो इसी प्रकार क्रिया में अमर जुड़ जाए, तभी भी भगवान याद करेंगे, अरे ये प्रयास तो किया था भक्त बनने के लिए, भक्ति करने के लिए प्रयास तो किया था, उसको भी भगवान याद करके दुख पाएंगे। तो भक्ति इतने प्रबल है, इतने भगवान को भस्म कर डलता है कि भगवान भक्ति के क्रिया, भक्ति तो कर नहीं रहे, भक्ति करेंगे उसके लिए जो आवश्यक क्रिया प्री रिक्वायरमेंट प्री रिक्वायर्ड्स उसको भी करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसको भी याद करते हैं। और वो तो साक्षात भगवती सीता थी। भगवान के साथ में उनका जिस प्रकार के सेवा, जिस प्रकार के व्यवहार थी, आज भगवान तान तान गुणान इस सब गुण को याद करके वो शोक करते हैं, सीता जी के विरह को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार भगवान राम के सीता के जो विरह, वो कई भक्तों को सहन नहीं होता। अभी भी एक संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय जो है, वो प्रामाणिक संप्रदाय, वो कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि राधा कृष्ण के विरह हुआ करके, ना बोलते ना हो नहीं हुआ, वो अलग नहीं हुआ। वो तो हमेशा मानते हैं कि निकुंज लीला है, भगवान तो साहब विरह में रहते हैं, यहाँ हमको नहीं देख, प्रकट नहीं अप्रकट रूप में तो हमेशा साथ में। वो कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान ने गोपियों को छोड़कर चले गए, तो नहीं करते नहीं, क्योंकि भक्त का भाव है, जिस भाव से भगवान को भजे। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े भक्त आचार्यों का भी यही भाव है, नहीं नहीं हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो ठीक है, आप अलग मत कीजिए, इसमें आप आनंद में रहे, भगवान अलग करेंगे नहीं, आप नहीं चाहते हैं, भगवान का तो और कुछ काम है ही नहीं, भगवान चाहते हैं मेरे भक्त मेरे शक्ति को मेरे से अलग नहीं करना चाहते, हम साथ में रखना चाहते, तो उनके लिए साथ में रहेंगे। और जो चाहता है कि नहीं उसमें तो आनंद है, लेकिन उससे ज्यादा आनंद होगा अलग रहने से, बोले आपके लिए अलग भी हो जाएंगे। तो ये जो अलग रहने का जो आनंद, उस आनंद जगत वासियों को तो पता ही था नहीं, कोई बड़े बड़े भक्त समाज को भी पता नहीं था, ये तो साक्षात भगवान स्वयं 2-in-1 श्री चैतन्य महाप्रभु, जो राधा भाव द्युति सुबलितम, जो भगवान स्वयं राधिका की प्रेम को और कांति को भाव को धारण करके जो रूप लेकर के आए, वो आकर जगत को सिखाए, यदि गौर न है तब की है केमन जान धरिताम देह राधा महिमा प्रेम भक्ति सीमा, केमन कैसे जान सकता मैंने, राधा की जो महिमा है प्रेम भक्ति को मैं कैसे जान सकता था, केवल सी गौरंग महाप्रभु के शिक्षा दिए, ये उनके अनुयायी इसको रिसर्च करके पाए। अरे सुख, ये क्या सुख है, उनके समान में कुछ नहीं, जितने रस है, क्या पद है, उज्ज्वल रस ब्रजित प्रचार पर क्या भाव जा ब्रजित प्रचार, जय जय ज्वल रस सर्व रस सार, वो बात कहें कि जितने रस है सारे रसों में चमकीला उज्ज्वल रस है, सारे रसों का सार है, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार पर किया भावे जहा ब्रजित प्रचार, और कहीं नहीं मिलता है एक्सेप्ट वृंदावन, केवल ब्रज में ही जिस रस के भाव को आस्वादन किया जा सकता है, वो रस क्या है ना, पर किया भाव, स्व किया भाव नहीं है, जो निकुंज मिलन है स्व किया है, वो कृष्ण के नित्य प्रेयसी है, नित्य प्रिया है प्रिया पितम, बोले वो तो है, लेकिन उनसे भी करोड़ों गुना ज्यादा सुख आनंद की बात है, ये जगतवासी आप नहीं जानते हैं, तो स्वयं भगवान भगवती राधा राकृष्ण खुद सिखाए, बोले इसी में जो आनंद है क्या जाने, ये जो पर क्या भाव सुख पर क्या भाव कैसे है, ये भगवान स्वयं आकर के राधा भाव से सिखाए। बोले हम तो वैकुंठ में गोलोक में सदा हो, तो हमारे नित्य हमारे हैं नित्य प्रिया प्रीतम है ही, लेकिन यहाँ आकर के एक्सपीरियंस करने के लिए, वो दूसरे के लड़की मैं दूसरे के लड़का, वो दूसरे को शादी की मैं दूसरे को शादी किया, उनके पति अलग है मेरे पत्नी अलग है, लेकिन फिर भी चोरी चोरी छिपी छिपी मिलेंगे, उसमें जो मिठास है उसमें जो आनंद है वो दुनिया वाला क्या जानता, सही में हम लोग जानते, आपका घर भगवान इसीलिए प्रैक्टिस बचपन से के माखन चोरी की, उनके घर में 9 लाख आए थे, ट्रकलोड माखन उनके घर में था, क्या भाई चोरी किस लिए कोई करे, कमी हो तब तक चोरी करे ना, घर में इतने माखन पड़ा ट्रकलोड माखन, एक ही तो कोई ले दे करके 10-20 लड़का तो है नहीं, एक ही तो लला था उनके पूरे राज परिवार में तो एक ही तो थे, उनके लिए कोई कमी था माखन, लेकिन फिर भी चोरी चोरी माखन खाने में जो मीठा है, घर के माखन से पता नहीं, हाँ क्यों उसमें आनंद आता है। आप देखो ना, भले अपना घर में बहुत बढ़िया सामान मिला, लेकिन कहीं और देखा अच्छा चीज चोरी से लाकर थोड़ा खा ला, बहुत टेस्टी जाना है, हाँ? तो वो जो है चोरी चोरी का जो संबंध है उसमें जो आनंद है, इस आनंद को भगवान और भगवती आस्वादन करने के लिए इस जगत में आकर के इस पर के अभाव को प्रकट किए हैं। इसी को महाप्रभु सिखा दिए कि जो उज्जवल रस है सर्व रस सार, ये पर के अभाव जब रजत पचा, यहाँ भगवान राम भी उसको आस्वादन क्यों नहीं करेंगे। भगवान राम भी इस पर क्या बोले, वो तो है सीता, तो हम सीताराम सब जगह जान, सब जानते हैं, हम तो है ही, वो मेरी हम, मैं तो उनका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग रह के उसको टेस्ट लेते लिए हैं, वो भी थोड़ा टेस्ट लिए हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं जब वो तो यहाँ तो नहीं हो सकता, ये धरती पर ही हो सकता है, यहाँ है थोड़े दिन, वो भी टेस्ट ले लेते, तो टेस्ट भी किए। ये भी पर क्या भाव का आस्वादन है भगवान राम के, जो सीताजी की इस प्रकार से व्यवस्था करके सीताजी अपनी चली गई, और उनके विरह में सीताजी विरह तो भोग कर रही है, भगवान भी विरह भोग कर रहे हैं इसमें, लेकिन हमको भले बाहर से दिखाई पड़े कि दुख है, लेकिन वास्तविक रूप में तो चिन्मय आनंद है, उसमें जो सुख है वो सुख केवल वही अनुभव कर सकते हैं, हम नहीं जान सकते कितने दिव्य आनंद है। तो इसी प्रकार ब्रजवासी गोपी गोप और राधिकादि जो कृष्ण के विरह में रह करके जितने विरह में थे, इतने उनको आनंद प्राप्त होता था, इतने आनंद प्राप्त होता था, वही केवल उनको आस्वादन करने के समर्थ थे, वो जान सकते थे, समझ सकते थे, और जो उनके कोटि के अनुजाई भक्त हैं वही उसको अनुभव कर सकते हैं कि पर के अभाव में क्या आनंद है, क्या आनंद है। तो भगवान उसी को प्रकट करा। तो इस प्रकार भगवान राम और सीता में इस प्रकार की विरह को भले कोई नहीं जाने, नहीं 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 इतने दुख कैसे हो सकता, भगवान इतने निष्ठुर कैसे, अरे निष्ठुर नहीं है, हमको भले दिखाई पड़ता है कि भगवान निष्ठुर है, भगवान कहे कि निष्ठुर है, भगवान तो अपने पर के भाव को आस्वादन कर रहे हैं, भले लीला में थोड़ा दिखता है वो बहुत कारुण्य है, इतने टू मच और पैथेटिक, अरे पैथेटिक तब तो रस आएगा ना, जो कोई लीला ड्रामा अगर सुपर पैथेटिक सब रो पड़ते हैं तो उनको नोबेल अवार्ड मिलेगा ना, क्या ड्रामा है, लाखों को रुला दिया, और नहीं तो कोई मजा नहीं आया तो मजा कैसे आया। तो इस प्रकार भगवान की लीला इतनी जीवंत है, उन्होंने रस आस्वादन करके इस प्रकार के रस को भी आस्वादन किए पर क्या भाव को। तो इस प्रकार से हम लोग को ग्रहण करना चाहिए, प्रभुपाद नहीं समझा रहे हैं कि भगवान उसको सुन करके सीताजी की भूमि प्रवेश के बाद को सुन करके जो शोकग्रस्त हुए उनके गुणों को याद करके, ये तो उनका चिन्मय दिव्य आनंद था, भले हमको बाहर से दिखाई पड़े उनके दुख है करके, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान की सीताजी के प्रति इस प्रकार व्यवहार को निष्ठुरता नहीं था, इसमें सीताजी भी प्रसन्न थी। वाल्मीकि में तो बताया गया सीताजी पहले बोल दी थी मुझे भेज दीजिए करके जंगल में, भले कोई कारण क्यों ना हो, जानते थे कि ये प्रभु ने इसे भी टेस्ट लेना चाहते हैं, तो हम साथ में रहने से नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भगवान की लीला के पीछे अनेक अनेक कारण हो सकता है, जो प्रेमी भक्त भावुक भक्त है उस भाव को प्रेम ग्रहण करते हैं। हम बाहर की तरफ से देख करके भले हम कोई भी अपना मतामत दें, ये मतामत का क्या मूल्य है, कुछ मूल्य नहीं है, भगवान सर्वज्ञ हैं, एब्सोल्यूट है, सर्वसमर्थ हैं, वो जो करते हैं वही है, हम भगवान को पूछ नहीं सकते क्यों किए, हुआ हुई, हम कौन है भगवान को क्यों पूछने वाले हैं, कुछ नहीं है, हम आए और फंस करके आए, फंस करके मर जाएंगे, कितने दिन जिंदगी है अपना। प्रभुपाद जी एक भगवत गीता का उदाहरण बोलते हैं, अर्जुन जो रोने लगा अपने भगवत गीता में शुरुआत में, मेरे संबंधी मर जाएंगे, रोने लगे, तो प्रभुपाद जी एग्जाम में कहते बोले बताओ ये कोई शोक होता है, बोले क्यों शोक करता है, बोले पहले नहीं था, हाँ पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में थोड़े दिन के लिए रोना थोना इतना शुरू हो गया। एक उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं, बोले अटलांटिक महासागर में एक व्यक्ति जाकर किनारे बैठा, जो तरंग उठता है, तरंग में फैन में बबुल्स होता है, क्या बोलते हैं उसको, बुलबुले, हाँ तो उसको देखे बुलबुले हजारों बन जाता है एक सेकंड में, और फिर दूसरी सेकंड में फट गए, खत्म हो गए, फिर पानी में समा गए, अरे देख रोएगा, अरे कितने सुंदर बुलबुला बुलबुला था, वो फट गया, अरे वो कहाँ दुख कर गया, अरे बदमाश हो, हजारों बनते मिनते एक एक सेकंड में, उसके लिए रोने से क्या होगा। तो ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग हुत्ता हुत्ता प्रलियत ना, पहले हम लोग थे नहीं और बाद में रहेंगे नहीं, और बीच में थोड़े दिन के लिए आए, भगवान की काल के गणना में हमारे आयु के गणना तो एक सेकंड के हिस्सा भी नहीं हो, आए धट से गए खत्म, इतने में हम इतने नाटक करते, रोना धोना उछाल कूद करके क्या करते है ही नहीं, उसके बाद मर मिट कर खत्म। स्वाहा, कहा कि इतना करे, जितने क्षणस्थाई इतने क्षणिक जीवन में अगर किसी को दुख नहीं दे ये प्रयास कर ले, यही से अवर जीवन सफल हो जाएगा। बस बाकी तो क्या करे ना करे, आपने बोली आपने गुण अपने कर्म के द्वारा अगर दूसरे को दुखी ना कर दिया, मैं भले सुखी नहीं हुआ, यही सबसे मेरे लिए बड़ा सुख है। संसार के लिए, दुनिया के लिए सबसे बड़े कर्तव्य बन जाएगा। बाकी तो मरने वाले हैं, मरी रहे, मरी जाएंगे, देखते देखते खत्म। महाकाल के गणना में कुछ नहीं आयो। तो इस प्रकार भगवान की इस प्रकार नित्य लीला को स्मरण करते हुए, दूसरे को मन में उद्वेग ना दिए हुए अगर हम बच गए तो हमारे इस जीवन के एक सार्थकता हो सकता है। हरे कृष्ण। समवेत भक्त वृंद की, कोई प्रश्न है किसका? हाँ जी,
जी आपने कहा कि जैसे जो शाश्वत, जैसे हम कृष्ण के धाम से आए हैं तो उनके अनुसार जो हमारा जीवन है ये एक पल के, एक क्षण के, जैसे कि तो जितना जैसे ब्रह्मा का पूरा जीवन होता है करोड़ों अरबों साल, बार बार हम जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, तो ये पूरा इतना बड़ा समय भी उसके अनुसार कुछ भी नहीं है।
आप पूछ रहे हैं इस काल के बारे में, समझो ब्रह्मा जी के बारे में। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, बोलते हैं जस्य क निश्वसित काल मथावलंब्यो जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर महान सही अजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। बोलते हैं कि हम तो गोविंद को जैसे पकट में लेकर घूम रहे हैं, गोविंद जी मंदिर अभी आया, ऐसे मानते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं जगत पिता, वेद गर्भ, चतुर्मुख ब्रह्मा का ये स्टेटमेंट है कि जस्य एक निश्वसित, हम सब निश्वास लेते हैं ना, जो सांस निकालते कपाल भाती ये जो निकालते हैं हम सब निकालते हैं, निकाल कर कितने समय बाहर रख सकता है, इसको निश्वसित काल कहा जाएगा। हम सभी का निश्वसित काल एक मिनट भी होगा नहीं, मिनट होगा? बड़े जोगीचार्य हो तो एक दो मिनट भले कर ले, हम तो कुछ सेकंड में हम जाएंगे। इसको निश्वसित काल हमारा एक आध दो सेकंड होगा निश्वसित काल। ब्रह्मा जी कहते हैं जिनका एक निश्वसित काल, मतलब एक बार बाहर निकाल दिए फिर वो सांस नहीं लिए जब तक बाहर रहेगा सांस, इसी को निश्वसित काल कहा जाता है। जिनका एक निश्वास निकला हुआ काल में, जैसे एक निश्वसित काल अथ अवलंब्य, उसी के अवलंबन करके इसी काल में ये सारे ब्रह्मांड की प्रकट हुआ, मेरे जन्म हुआ, ब्रह्मा जी बोलते मेरे पैदाइश हुआ उसी के अंदर, जब सांस बाहर कपाल भाती में थे, अभी सांस बाहर नहीं लिए, अब मेरे प्रकट हुआ होकर के मैं तपस्या किया, सृष्टि किया, बड़ा हुआ, मेरा दिन प्रतिदिन, ब्रह्मा जी के एक दिन कितने लंबा पता है ना, 1000 चतुर्युग एक दिन होता है, फिर नाइट भी इतना होता है, 24 घंटा 2000 चतुर्युग, इसी हिसाब से 100 साल पूरा होगा ब्रह्मा जी के, तब उनका फिर सांस अंदर जाएगा। कितने बड़े पुरुष हुआ होगा वो पुरुष जिनके एक निश्वास काल 2000 चतुर्युग इंटू 100 है ना, नहीं हो सॉरी सॉरी में भूल गया पागल, 2000 चतुर्युग इंटू 365 इंटू 100, हम कंप्यूटर कैलकुलेटर फेल नहीं हो सकता। ये जिनका कपाल भाती भाई निश्वास बाहर निकाल दिया, वो पुरुष कौन है इतने बड़े जस्य एक निश्वास, अरे सत एक कला भी एक कला है भाई। कला किसको कहते हैं? अंश के अंश को कला कहा गया, अंश के अंश को कला। वो कला पुरुष जो है उनका निश्वास इतना बड़ा, हाँ वो कौन है ना? महाविष्णु है। महाविष्णु वो तो एक कला मात्र है, उनके जो अंशी हैं महान वो गोविंद, उनका तो महिमा मैं भूल ही नहीं सकता हूं, केवल प्रणाम कर सकता हूं, तमहं भजामि प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ प्रणाम कर दिए, मैं बोल नहीं सकता, उनके अंश के कला के जब निश्वसित काल इतना बड़ा है, मेरे आयु ही पूरा हो जाता है, तो हमारा काल की गणना से क्या होगा? एक सेकंड भी बहुत हो गया, एक सेकंड तो स्थान नहीं ना, सेकंड के बिलियन भाग करो तब भी नहीं हो। इसीलिए देवता लोग देखते बोले मनुष्य किसी है, अभी आया मर गया, आया मर गया, उसमें क्या लेकिन हाँ मूर्खता है, इस काल के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इतना नाटक कर रहे हैं। इस काल ज्ञान जिसको हो जाएगा, हाय हाय क्या है। एक पुराण में कथा आता है जिनका नाम है लोमस ऋषि। एक ऋषि थे जिनको वरदान था, उन्हें ऐसे वरदान मिला कि जितने उनके शरीर में लोम है इतने कल्प उनका आयु है। एक कल्प जानते ना, ब्रह्मा जी के एक दिन एक कल्प होता है। उनके शरीर में जितने लोम है इतने कल्प आयु है उनका। और एक दिन नारद जी तो सुपर मैसेंजर है, एक दिन बहुत ढूंढे एड्रेस ढूंढते, लोमर ऋषि का एक बार मिले, बोले परेशान हो गए, आपका कोई एड्रेस नहीं है, प्रेजेंट परमानेंट कुछ भी करो यार, प्रेजेंट एड्रेस नहीं परमानेंट एड्रेस बोलो, कुछ भी रखो, क्योंकि घर घाटी नहीं ठिकाना, कहीं कुटिया फुटिया तो होगा। तो लोमर ऋषि का स्टेटमेंट था नारद जी के, बोले नारद जी थोड़ी दिन की जिंदगी है, कितने छोटी सी जिंदगी क्या कुटिया बनाओ, कितने दिन रहना है। ये बात कौन कह रहा है, जिनके एक एक लोम एक एक कल्प का आयु रखता है, वो कहता है कितने दिन की जीवन है, क्या घरवाड़ी बना। और हम पता नहीं पूरे शरीर की आधा बिता दिए, मर गए, पूंजी इकट्ठा कर बोलेंगे अभी जाए ब्रजवास करेंगे, प्लाट खरीदेंगे, पटवटी क्लियर से निकल करेंगे, अब जा ही नहीं पाएंगे, अब सुहा वहीं से जा नहीं पाएंगे, मर गए खत्म, सारे पूंजी लेकर कौन खाएंगे। हम लोग का ऐसी दुर्बुद्धि, तो क्या काल के सामने हम आयु का गणना करेंगे। तो जो भी अति तुच्छ नगण्य समय तक हम इस संसार में आए हैं उसमें केवल इतना कर संगे परे उद्वेग ना दे तो इसे हमारा कुछ काम बन जाएगा। हरे कृष्ण। हाँ जी
महाराज जी, आपने आज बताया कि सबसे नगण्य जो इस भौतिक जगत का जो तुच्छ सुख है वो इंद्र तृप्ति है, काम वासना। तो देखते हैं कि इतना लंबे समय स्कोन में लगे रह के भी, माला करने पे भी और श्रवण कीर्तन करने पे भी इस चीज़ से बहुत आसक्त हो जाते हैं और इस चीज़ को रोक नहीं पाते। इस चीज़ में हमारी पता भी हमारे को कि इससे भक्ति का विनाश होगा, इससे अगर हम नीचे गिरेंगे तब भी हम इसमें गिर जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है। तो ऐसा क्या इसका उपाय है या क्या ऐसा सजेशन है जिससे कि हम इस चीज़ से बच सकें और भक्ति में लंबे समय तक टिक सकें। इसको
एक ही उपाय है, भगवत शरण, हरि शरणम। ये माया की प्रभाव है, ये एक सेकंड में फिर भुला देता है, बैक टू स्क्वायर ले आता है। तो माया से बचने का एक ही उपाय है, माँ में भाई प्रपद्यंते माया में धांतरंतित है। हे प्रभु आप अगर बचाओ तो बचाओ, नहीं तो मेरे तो कान पकड़ लिया, नहीं सो होपलेस केस है ना। भगवान चाहे तो बचा ले, नहीं तो निज वाला चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छा अच्छी निर्भर करे। अगर भगवान चाहे तो कुछ करे, नहीं तो हमारा क्या चले, बड़े बड़ियों का घुटना टेक गया हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन भगवान चाहे तो असंभव को संभव करा सकते हैं। तो उन्हीं के सब कुछ छोड़ करके दांत में घास की तिनका ले करके नगण्य तुच्छ होकर भगवान के शरण में जाओ और भगवान कृपा दृष्टि दे दें उनके। अरे उनके शरण में क्या, उनके कोई निज जन, उनके भक्तों के शरण में चले जाओ, उनके भक्तों की भी कृपा हो जाए तब भी काम बन जाए। हम जैसे नालायक के लिए तो वही भक्तों की कृपा बहुत है, तब मैं अभी छूट जाए। हरे कृष्ण। ग्रंथराशि भागवत महापुराण की संवेद भक्तवृंद की।